ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गोरखा की धारचे गांव पालिका के रेसे फाट में भूस्खलन के कारण 5 लोग हुए लापता। हवाई सुरक्षा के विषय में गंभीर होने के लिए सांसदों ने सरकार का किया ध्यानाकर्षण। पूर्व गृह मंत्री गोविंद राज जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में ठहराया दोषी। और इसराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर एक रॉकेट हमले में 12 बच्चों और एक किशोर की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विभिन्न संघीय मंत्रालयों की कार्य प्रगति के बारे में संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में सभी मंत्रालयों के सचिवों से कार्य प्रगति और भावी कार्ययोजना के बारे में जानकारी ली। ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव कृष्ण हरि पुष्कर ने दी। इस दौरान दो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार लगायत उपस्थित थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ओली ने समसामयिक विषय पर परसों मंगलवार को पुनः विचार विमर्श होने की बात बताई है। उन्होंने लिखा है कि नागरिकों को त्वरित सेवा प्रवाह और विकास के कामों को आगे बढ़ाने में क्या क्या समस्याएं हों और किस तरह काम किया जा सकता है, जैसे विषयों में सचिवों ने खुलकर बातें रखी हैं और मंगलवार फिर से विचार विमर्श करके काम आगे बढ़ाने के संबंध में फैसले लिए जाएंगे। उत्तरी गोरखा की धारचे गांवपालिका वार्ड नंबर 5 शिंगला स्थित रेसे में कल रात आए भूस्खलन के कारण 5 व्यक्ति लापता है। स्थानीय जीत बहादुर गुरुंग के घर और तबेले को भूस्खलन बहाले गया, जिसके साथ ही लापता होने वाले 37 वर्षीय अजीत बहादुर सहित उनके पिता 60 वर्षीय सोलाल कांछा गुरुंग, उनकी श्रीमती 35 वर्षीय कांछी गुरुंग, 33 वर्षीय रमेश गुरुंग और 24 वर्षीय रमेश परियार शामिल है। गोरखा के प्रमुख जिला अधिकारी भोली दहाल के अनुसार भूस्खलन में घायल हुए स्थानीय 35 वर्षीय दिलीप गुरुंग और 27 वर्षीय खम बहादुर गुरुंग का हेलीकॉप्टर से उद्धार कर इलाज के लिए उन्हें काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लापता लोगों की खोज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री गोविंद राज जोशी को भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीशों विनोद शर्मा और बालकृष्ण ढकाल की साझा पीठ ने जोशी द्वारा विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका में जिक्र अपर्याप्त बताते हुए भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दोषी ठहराया। साथ ही उन्हें 69 लाख 15 हजार जुर्माना और 9 महीने कैद का फैसला सुनाया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में शिक्षा शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 पर सैद्धांतिक विचार विमर्श हुआ। बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्ट राय ने राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न हुए शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 पर विचार करने का प्रस्ताव किया था। बैठक में विधेयक पर सैद्धांतिक विचार विमर्श में सहभागी सांसदों ने कहा कि देश में दक्ष जनशक्ति, उत्पादन और सर्वसुलभ व सहज पहुंच वाली स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए विधेयक महत्वपूर्ण है। बैठक में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि हवाई दुर्घटना संबंध में बनी छानबीन समिति तटस्थ और निष्पक्ष रूप से छानबीन करेगी। मंत्री पांडे ने सदन को बताया कि दुर्घटना में मारे गए 18 में से 17 लोगों के शव उनके परिजन ले जा चुके हैं और एक यमनी नागरिक के शव के व्यवस्थापन के लिए नेपाल में यमन का दूतावास न होने के कारण नजदीकी देश से समन्वय के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पूर्व बैठक में सांसदों ने इसी श्रावण 9 गति को हुई विमान दुर्घटना, बाढ़ और भूस्खलन से हो रही मानवीय एवं भौतिक क्षति जैसे विषय में सरकार का ध्यानाकर्षण कराने के साथ ही हवाई सुरक्षा के विषय में गंभीर होने के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि जेलों और किशोर सुधार गृहों के सुधार में संघीय प्रदेश और स्थानीय तहों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। प्रतिनिधि सभा कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की आज हुई बैठक में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि देश भर की जेलों में कैदियों की संख्या अधिक है और किशोर सुधार गृहों में जगह की कमी और भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी है। उन्होंने कैदियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य और स्वच्छता समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि कैदियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और परामर्श की व्यवस्था लागू करना जरूरी है। विमर्श में बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री नवल किशोर शाह ने कहा कि राणा काल की पुरानी जेलें और सुधार गृह अब भी खस्ता हालात में हैं। उनका शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि आगामी चुनाव अकेले लड़ने और जीतने की योजना पर चर्चा चल रही है। आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाड़ा में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि विश्वास व्यक्त किया कि नेपाली जनता माओवादी केन्द्र को विजय बनाएगी। काठमांडू में हैजा के 3 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य कार्यालय काठमांडू के प्रमुख डॉक्टर अर्जुन सापकोटा ने बताया कि राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान कालीमाटी क्षेत्र के 3 पुरुषों में हैजा की पुष्टि हुई है। मरीज का इलाज शुक्रराज ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीज हॉस्पिटल में चल रहा है। इससे पहले ललितपुर के एक सुधार केन्द्र में हैजा के 7 मरीज पाए गए थे। कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर सापकोटा ने कहा कि दूषित पानी के कारण हैजा फैल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक हैजा का बैक्टीरिया दूषित भोजन या पानी के सेवन, साफ सफाई और साफ पीने के पानी की कमी के कारण होता है। यदि संक्रमित व्यक्ति का समय पर इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। आज रेडियो नेपाल ने रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी को विदाई दी। रेडियो नेपाल के केंद्रीय प्रसारण कार्यालय सिंह दरबार में आज आयोजित विदाई समारोह में कार्यकारी निदेशक केसी ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रसारण सामग्री में सुधार और प्रसारण पहुंच के विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को याद किया। कार्यकारी निदेशक केसी ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में रेडियो नेपाल की प्रसारण पहुंच 85% से बढ़कर 94% आबादी तक पहुंच गई है और रेडियो को सोशल मीडिया और एप्स के माध्यम से ऑनलाइन सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेडियो नेपाल के प्रसारण को समावेशी बनाने के लिए विभिन्न भाषाओं में समाचार और कार्यक्रम जोड़े गए हैं और रेडियो नेपाल के प्रसारण को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मुद्दों पर आधारित रेडियो कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था भी की गई है। विदाई समारोह में रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री ने उल्लेख किया कि कार्यकारी निदेशक केसी को उनके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपनाया गया था जो अपने काम के प्रति समर्पित है और सभी कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रख सकता है। गुलमी के रेसुंगा हवाई अड्डे पर 1 महीने से हवाई उड़ानें प्रभावित है। रेसुंगा हवाई अड्डे के प्रमुख सुमन थापा ने बताया कि बरसात के मौसम में बारिश और घने कोहरे के कारण आषाढ़ के दूसरे सप्ताह से उड़ानें अवरुद्ध है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर एक रॉकेट हमले में 12 बच्चों और एक किशोर की मौत हो गई है। एक फुटबॉल पिच पर रॉकेट से किए गए हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इसराइली सेना ने बताया है कि रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसराइली सेना के इस दावे का खंडन किया है। इसराइली सेना का कहना है कि रॉकेट मजदल शम्स के द्रुज शहर पर दागा गया है। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि हमलावर को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस हमले के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में सीधी जंग छिड़ सकती है। पिछले साल अक्टूबर में इसराइल गजा युद्ध छिड़ने के बाद इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गोरखा की धारची गांवपालिका के रिसेफाट में भूस्खलन के कारण 5 लोग हुए लापता। हवाई सुरक्षा के विषय में गंभीर होने के लिए सांसदों ने सरकार का किया ध्यान आकर्षण। पूर्व गृह मंत्री गोविंद राज जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में ठहराया दोषी। और इसराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर एक रॉकेट हमले में 12 बच्चों और एक किशोर की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।